Recording in progress.
سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في بلاد البر. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا ارزقنا. तो कौन से सहाबी की बात चल रही है? हजरत जुबैर बिन आवाम की, और आखिरी क्लास में क्या बात चल रही थी आप बताइए। यार इस तरह का तुमने तो शायद नहीं कहा था कि आप सिद्धा हिंदू कहते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग कहते हैं इस तरह की बात, जो कि सीधी वजह से कहते हैं। वन ऑफ द रीजंस कैन बी कि वो इल्म नहीं होता उनके पास, इसके पास इल्म नहीं होता तो फिर वो जाहिल कहलाता है। तो वो इस तरह की बात करते हैं कि सहाबियात लड़ते ही, तो आज भी लड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसे लड़ रही है आजकल, कौन कहते आजकल ट्रेनों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं यार, पता नहीं कहाँ का औरत मर्द लड़ना शुरू हो जाते हैं। आपको पता है प्लेन में कभी देखा है? कभी प्लेन में लड़की लड़का लड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी ट्रेन में लड़ना शुरू हो जाते हैं। नारायण करे साहबियात लड़ा करती थी, तो ये भी लड़ते हैं साहबियात की मिसाल के ऊपर है, ऐसा हरगिज नहीं है। अच्छा, और आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने तो अल्लामा इकबाल का वो वाला मस्कशुदा शेर जो हमने पढ़ा था वो आपने सुना दिया। अच्छा, तो वाक्य चल रहा था हजरत हमजा रजी अल्लाह की अनअन की शहादत का, क्या है जब गजवाए उहद में हजरत हमजा को शहीद कर दिया था वहशी रजी अल्लाह ने, फिर हिंद रजी अल्लाह ने हमजा रजी अल्लाह की जो कॉर्प्स थी, डेड बॉडी थी, तो उसको मुसला किया था। तो उसके बाद हजरत सफिया रजी अन्हा, जो हजरत हजरत की सगी बहन थी, वो उनको तलाश करते हुए आई कि मैं देखूं हमजा किस हालत में है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मना करने का इंतजाम किया, और जुबैर रजी जो उनके बेटे ही थे वही जा करके फिर उनको उन्होंने रोका भी। इसके तहत कुछ बातें इसके अलावा भी हमने करी थी औरतों के सफर या औरतों के पर्दे वगैरह से मुतल। आगे हम बढ़ते हैं कि फिर हुआ क्या था। आखिरी बात एक्चुअली इस वाक्य की हुई थी कि जब हजरत सफिया रजी अन्हा रुक गई थी, क्योंकि नबी रसूल का हुक्म आ गया था, तो सफिया रजी अन्हा ने दो चादरें हजरत जुबैर रजी अन्हा के हवाले करी कि मैं ये चादरें अपने भाई के कफन के लिए लेकर आई थी। ठीक है, कफन के लिए लेकर आई थी। क्या उनको पता था कि हजरत अन्हा जो है वो शहीद होने वाले हैं? नहीं, उनको पता चल चुका था कि हजरत अन्हा शहीद हो चुके हैं। ठीक है, शहीद हो चुके हैं, तो अब वो कफन के लिए दो चादरें अपने साथ लेकर के आई थी। वो चादरें साथ लिए लिए नहीं फिर रही थी, ठीक है, या पहले से नहीं आई हुई थी, बल्कि चादरें इस खबर मिलने के बाद आई। तो वो लड़ाई का हिस्सा फिर कैसे हो सकती है? ठीक है, लड़ाई का हिस्सा कैसे हो सकती है जबकि वो चादरें लेकर के अपने घर से आ रही हैं दरान की कफन के लिए। तो जुबैर रजान को उन्होंने वो चादरें दे दी, जुबैर रजान ने ले ली। लेकिन फिर फरमाते हैं कि अम्मी को तो हमने वापस भेज दिया, लेकिन जब हमजा रजान को दफन करने का वक्त आया ना, कि यानी जब कफन दफन शुरू हुआ और कब्रें खोदी गई, ये कब्रें कहाँ खोदी गई किसी को पता है ये कब्रें कहाँ पर थी? पहाड़ के सामने नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ तो फर्दर यानी ओहद की डायरेक्शन का, क्या ऐसे ही किसी को इससे इख्तलाफ है? इसकी तरफ है मस्जिद नबी से ओहद किस तरफ है? नॉर्थ। ठीक है, और मक्का मुकरमा किस तरफ है? साउथ, यानी किबला साउथ की डायरेक्शन में है और ओहद पहाड़ जो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो ये कब्रें कहाँ खोदी गई थी आप बताइए?
साउथ ईस्ट की तरफ।
साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट,
साउथ ही है।
साउथ, ठीक है, जहां इन शुहदा का कब्रिस्तान आज है, ये उस वक्त नहीं बनाया गया था, ये तो बाद में बनाया गया था ना। पहले ये कब्रें जो है खोदी गई थी, या ये कब्रें बनाई गई थी जबले रुमा था, वो छोटा टीला जिसके ऊपर यानी रुमात को जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने, जो तीरंदाज थे, उनको स्टेशन किया था, ये उनसे पहले, ठीक है, ये वाली जगह थी जो कि जबले रुमात और मस्जिद नबी के दरमियान थी। दरमियान से मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं, बल्कि जबले रुमात की साइड साइड पर थी, ठीक है, लेकिन टूवर्ड्स मस्जिद नबी इस डायरेक्शन में थी। तो यहाँ पर जो है ना ये कब्रें खोदी गई थी, यहाँ पे इनको दफन किया गया था। इसके 40 साल के बाद जो है ना फिर इन सहाबा की कबूर को यहाँ से मुंतकिल किया गया था पीछे। क्यों? इसलिए कि यहाँ पर सैलाबी रेला वगैरह कुछ पानी वगैरह आना शुरू हो गया था, तो उससे हिफाजत के लिए फिर इनकी कब्रों को निकाल करके, इनकी अजसाम को निकाल करके पीछे मुंतकिल किया गया था, ठीक है। तो जब ये कब्रें वगैरह खोदी जा रही थी और फिर कफन दे करके, कफन करने का वक्त आया, तो फरमाते हैं कि हमने देखा कि एक अंसारी सहाबी, वो भी शहीद हुए पड़े हुए थे, और उनकी लाश के साथ भी काफिरों ने इसी तरह की हरकतें करी थी जिस तरह के हमजा रजान की लाश के साथ करेंगी, ठीक है, लेकिन उनके लिए कोई कफन की चादर ही नहीं थी हमारे पास, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो हमें ये अच्छा नहीं लगा कि हम दो चादरों में हमजा रजान को कफन दे दें और उन अंसारी के लिए कोई कफन ही ना हो। तो हमने एक चादर जो है ना वो उन अंसारी के कफन के लिए इस्तेमाल कर ली और हमजा रजान को सिर्फ एक चादर के अंदर कफन दिया। अब ये हमजा रजान कौन थे? कौन थे ये हमजा रजान? ये तो VVIP पर्सनालिटी थे। कौन थे? VVIP का मतलब पता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। नबी अलैहिस्सलाम के चचा भी थे, नबी अलैहिस्सलाम के दूध शरीक भाई भी थे, और नबी अलैहिस्सलाम के जिगरी यार भी थे, और ये सैयदुल शुहदा भी थे। इतनी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, और उनके लिए कफन जो आया था उस कफन में से पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक और अंसारी सहाबी जो कि यार मददगार वहां पड़े हुए थे, कोई उनको शायद रिकग्नाइज भी नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन वो मुसलमान शहीदों में से एक थे, तो इनका कफन उनको दे दिया गया, ठीक है। ये है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम हमें ये सिखाता है, ये दुनियावी एतबार से हो या इवन दीनी एतबार से कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ना हो ना, तो भी जो है, तो यारो मददगार भी अगर कोई होगा, कोई गरीब भी होगा, कोई ऐसा होगा जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उसको भी इसके जैसे ही मुआमला किया जाएगा, उसके साथ भी, ठीक है। ये नहीं कहा जाएगा नहीं नहीं ये तो स्पेशल पर्सनैलिटी है, ये तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के चचा हैं, तो नहीं, इनका कफन तो हम किसी को नहीं दे सकते, ठीक है, और उनको जो है वो तो उनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है, तो उनको जो है वो ऐसे दफन कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं किया गया, ठीक है। ये है सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की सुन्नत।
करना
हाँ, नबी अलैहिस्सलाम की जो तालीमात है ना, ईसार, कुरान मजीद की जो तालीमात है, ईसार, ईसार का मतलब होता है कि अपने ऊपर किसी को तरजीह देना, ठीक है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर दूसरों को तरजीह देना जो कि आपके रिश्तेदार नहीं है, ये है नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम का असल अदब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो किया जाए, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश को फॉलो किया जाए, ना कि बस नबी अलैहिस्सलाम की जो है वो अदब में कसीदे पढ़े जाएं और जो है वो अच्छे अच्छे जो है वो कपड़े पहनाए जाएं और अच्छी अच्छी चादरें ओढ़ाई जाएं, या उनको उठा करके किसी दफ्तर में बैठा दिया जाए और उनके सामने जो है वो हाथ बांध करके झुक करके जो है वो खड़े हो जाया जाए, ये नबी अलैहिस्सलाम का अदब नहीं है। अगर आप नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो नहीं कर, ठीक है जी,
के बारे में वाकई आते हैं। 1 साल पहले ही जब वहाँ पे चश्मा वाला था पाकिस्तान में, तो जो बेटा था वो ये पैर पे लग गया उसके, तो उससे खून निकलना शुरू हो गया था, या फिर अगर सफर दिन
जैसे कि किनका
अभी बता दो ऐसे
हाल खुला है तो अभी कुछ अर्सा पहले कब्रिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम, वो तो बिल्कुल, अब तो बिल्कुल बाउंड्री वॉल के अंदर और सिक्योरिटी किस्म का एरिया वहां पे। अच्छा
काफी करीब करीब
हाँ हुआ होगा बिल्कुल लगा।
करीब करीब करीब
अच्छा ये फेक न्यूज थे। अच्छा वो बेचा लग गया था घूम रहा तो ये वाक्य हमने पढ़ लिया कि उनकी जो चादर थी वो फिर उन सहाबी अंसारी सहाबी को दे दी गई थी। अच्छा फिर उसके बाद अगला वाक्य आदत ने लिखा था कि उस्मान रज़ियल्लाहु की नियाबत। नियाबत का मतलब होता है किसी को अपना नायब बनाना, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना। ठीक है, तो एक वाक्य ऐसा हुआ कि एक दफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु जो है वो जब खलीफा थे तो वो हज पे नहीं जा सके थे किसी वजह से ना। ठीक है, तो उनसे लोगों ने पूछा कि अच्छा आप खलीफा वक्त हैं तो हज पे तो खलीफा जो है वो जाए, तो वो हज के अमीर होते हैं, तो आप चूंकि नहीं जा रहे हैं तो आप किसी को अपना नायब बना दें, अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दें हज पे। ठीक है, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके पहले हज पे भेजा था, फिर अगले साल जो है नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ ले गए थे। तो उस्मान रज़ियल्लाहु से पूछा कि आप किसी को अपना नायब बना दें, तो उस्मान रज़ियल्लाहु ने हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु को अपना नायब बनाया। ठीक है, बहुत सारे सहाबा उस वक्त दुनिया में मौजूद थे, एक से एक सहाबा मौजूद थे। तो अब पूछने वाले ने पूछा कि जुबैर रज़ियल्लाहु इनको एक, ठीक है, तो वो आपको क्या ज्यादा पसंद है? तो उन्होंने कहा, उस्मान रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि अल्लाह की कसम मेरे नजदीक वो इसलिए पसंदीदा है कि वो अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज्यादा पसंदीदा। ठीक है, यानी और सहाबा भी नबी अलैहिस्सलाम पसंदीदा थे, लेकिन जुबैर रज़ियल्लाहु की एक खास मकाम जो था वो उस्मान रज़ियल्लाहु को उस वक्त ज्यादा भाया, और उन्होंने फरमा दिया कि ये क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के ज्यादा पसंदीदा थे इस वजह से मेरे ज्यादा पसंदीदा है, तो मैं उनको अपना नायब बना करके भेज रहा हूं। हालांकि उस्मान रतान के साथ इनकी कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी वगैरह नहीं थी, लेकिन जुबैर रतान जो है वो बनु हाशिम के थे और उस्मान रतान जो है वो बनु उमैया के थे। ठीक है, ये दो अलग अलग शाखें थी कुरैश की। तो ये जो मोहब्बत है, इस वाक्य से और इन अल्फाज से पता चलता है कि ये जो मोहब्बत थी ना उस्मान रतान और जुबैर रतान, इस मोहब्बत की, इस उल्फत की वजह क्या थी? इस मोहब्बत की, इस उल्फत की वजह क्या थी? बड़ी सिंपल सी, आपको जोर से बोलना है तब आप आपसे पूछेंगे, वरना नहीं। जोर से बोलना होगा। ये जो मोहब्बत की वजह थी वो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। ठीक है, तो ये कहलाता है, हमारे मशाइख क्या फरमाते हैं कि निस्बत की वजह से मोहब्बत कर। ठीक है, ये किसी और वजह से मोहब्बत नहीं कि जी ये मेरे पड़ोस में रहते हैं इस वजह से मुझे उनसे मोहब्बत है, ये मेरी जॉब पे मेरे साथ होता है इस वजह से मुझे उनसे मोहब्बत है, या हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे इस वजह से हमारे हमें इनसे मोहब्बत है, ये मेरे खानदान के आदमी है इस वजह से मुझे मोहब्बत है, नहीं, बल्कि किस वजह से मोहब्बत? नबी अलैहिस्सलाम की वजह से मोहब्बत। ठीक है, तो इसको जो है ना फिर हमारे मशाइख की जुबान में पीर भाइयों की मोहब्बत भी कहता है, क्योंकि इन दोनों हजरात के पीर कौन थे? एक ही पीर, नबी अलैहिस्सलाम, पीर शेख सेम थे। ठीक है, तो ये पीर भाइयों से मोहब्बत जो होती है ना, ये फिर इस रिश्ते की वजह से मोहब्बत होती है, और इस मोहब्बत का फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ मकाम है। ठीक है, और ऐसे ही लोग होंगे कि जिनको कयामत के दिन क्या मिलेगा, उन्होंने लिखा है अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही लोग हैं जिनको कयामत के दिन क्या चीज मिलेगी? अर्श का साया। ठीक है, अल्लाह के अर्श का साया 7 लोगों को मिलेगा, उनमें से एक वो भी होंगे जो कि फकत अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, और अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने का मतलब क्या है? दीन की खातिर, अल्लाह के दीन की वजह से मोहब्बत करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हमें भी चाहिए कि हम जो आपस में एक दूसरे के साथ उल्फत मोहब्बत और ताल्लुक रखें ना, तो हम दीन की वजह से ताल्लुक को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, दीन की वजह से, ठीक है, अपने शेख की वजह से या नबी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक की वजह से, अल्लाह के ताल्लुक की वजह से, इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इस वजह से हमें फिर एक दूसरे के साथ नरमी का मामला कर कम भाई देखें, मकसद ये नहीं है कि अब आप जो है वो हर वक्त जो है वो बस गले में हाथ डाल करके एक साथ फिरते रहे, या हर वक्त जो है वो आपस में बातें करते रहे, ठीक है, ये इसका मकसद नहीं है। मकसद क्या है कि कम अज कम उनको अपने ऊपर तरजीह देना, इसार करना इस दीनी रिश्ते की वजह से, और इससे भी लेसर दर्जा क्या है, इससे भी कम अज कम दर्जा क्या है कि उनके बारे में दिल में बुग़्ज़ और इनाद ना रखना, ठीक है, कीना ना रखना, बुग़्ज़ ना रखना, ठीक है। ये किस बात की दलील है कि आपके लिए ऊपर की निस्बत की अहमियत है, ऊपर की निस्बत की अहमियत है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं कर रही है तो इसका मतलब यह है कि जो निस्बत है ना अपने ऊपर वालों के साथ, और उस शख्स को भी, ठीक है, जैसे दो भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको भी अल्हम्दुलिल्लाह हजरत जी से निस्बत है, इनको भी हजरत जी से निस्बत है, ठीक है। तो अगर ये एक दूसरे के साथ हजरत जी की निस्बत की वजह से नरमी का और मोहब्बत का, उल्फत का, कम अज कम दोस्ती का मामला रखेंगे, तो ये इस बात की दलील है कि इनको वाकई हजरत जी से मोहब्बत है। लेकिन अगर नहीं रखेंगे बल्कि आपस में लड़ाइयां हो रही होंगी, कीना हो रहा होगा, बहुत हो रहा होगा, नफरत हो रही होगी, तो इसका मतलब क्या है, ये भी आप ही बताएंगे, आसान से भी हो लेकिन फिर भी आप बताएंगे, आप बताइए पहले।
अपनी और परी है तो वो उसका एहतराम नहीं करते, उनको
आप क्या कहना चाहते हैं,
अच्छी सौंदर
हजरत जी से मोहब्बत नहीं है, ठीक है, इनको हजरत जी से मोहब्बत नहीं है, शेर से मोहब्बत नहीं है, तो फिर किससे मोहब्बत है भाई जी, जैद आपसे कुछ कह रहे हो, अगर ऊपर शेर से मोहब्बत नहीं है तो फिर किससे मोहब्बत
समोसे
है, समोसे से मोहब्बत है तो समोसे भी बंद हो गए किससे मोहब्बत है भाई,
शैतान
शैतान से मोहब्बत है, शैतान से और किस चीज से, नफ्स से मोहब्बत है, ठीक है, इनको अपने नफ्स से ज्यादा मोहब्बत है, ऊपर शेख से मोहब्बत नहीं है, शेख से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या है, अपना नफ्स, यानी इनका शेख असल में अंदर है, ठीक है, जंग में नहीं बैठे हुए, इधर बैठे हुए, इधर अंदर, सही है, उससे ज्यादा मोहब्बत है, इसी वजह से तो बस मुझे मेरे नफ्स को अच्छे नहीं लग रहे, इस वजह से जो है बस मैं आपसे लड़ाई, जी
एक बार ख्याल आता है कि हर किसी का हर चीज की जरूरत होती है, अपोजिट इंसान कह रहा है तो रोशनी है, तो अगर आपने पते के गए तो मुद्दा के अल्लाह ताला, अगर कोई इंसान अल्लाह ताला को जिसने वो करा था कि मैं बताऊं और नफ्स रखूं, अल्लाह ताला की एब्सेंस में भी पर्सन होती है नफ्स, नफ्स ने कहा था कि मैं रखूं तो आपने कहा था कि दस ऐसी चीज है जिसमें अल्लाह ताला को
अल्लाह
डायरेक्टली
ताला का मद्दे मुकाबिल, अल्लाह ताला के बिल मुकाबिल वो इंसान का अपना नफ्स होता है, ठीक है, शैतान तो पीछे रह करके जो है ना वो उसको आगे आगे कर रहा होता है। अच्छा, तो ये उसूल हमेशा याद रखिएगा कि अल्लाह के दीन की नस्बत से मोहब्बत का मतलब ये होता है, अल्लाह के दीन से हमें मोहब्बत है, और अगर अल्लाह के दीन की नस्बत से हम मोहब्बत नहीं कर रहे बल्कि हम ऐसे लोगों से भी जो है नफरत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हमें अपने नफ्स से मोहब्बत है, जो कि शैतान से मोहब्बत ही की एक शक्ल भी होती है। अच्छा, एक और वाकया हजरत ने लिखा था कि हजरत जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, जैसे कि हम पीछे भी सुन चुके हैं कि बहुत अमीर आदमी थे, मक्का मुकरमा में भी ये ट्रेडिंग करते थे, और जब मदीना मुनव्वरा आ गए थे तो बेशक शुरू में अगर इनके पास पैसे नहीं भी थे तो भी बाद में खूब सारे पैसे दोबारा से आ गए, क्योंकि उन्होंने फिर से ट्रेडिंग शुरू कर दी, और फिर से जो है बके जैसे जैसे पैसे आए उन्होंने जो है वो प्रॉपर्टीज खरीदनी शुरू कर दी, ठीक है, बागात इनके हो गए, खेत इनके हो गए, खलियान हो गए, तो ये बहुत अमीर आदमी बन गए, ठीक है। तो अब इन्होंने जो है ना वो वर्कर्स भी खरीदने शुरू, क्योंकि उस जमाने में गुलामों का सिलसिला चलता था, ठीक है, गुलाम जो कि किसी जंग वगैरह के नतीजे में किसी कौम के लोग जिसको के फाते कौम ने शिकस्त दी होती थी ना जंग के अंदर, तो अब उस हारी हुई कौम के जो लोग होते थे तो उनको किसी प्रिजन के अंदर नहीं बंद कर दिया जाता था, ठीक है, किसी कैदखाने के अंदर नहीं बंद कर दिया जाता था, बल्कि उनको जो है वो फातेह कौम के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था और क्यों प्रिजन में बंद नहीं किया जाता था, इसकी हिकमत हम क्लास में कभी, क्योंकि तो मुझे तो याद आ रहा है इसी घर में वो क्लास हुई थी जिसके अंदर ये वाली बात हुई, तो इसकी हिकमत क्या थी कि उनको प्रिजन में बंद नहीं करते थे और उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। क्यों?
दो बातें थी, पहली और आगे तो सर्विसेज देनी होती है, दूसरी के अगर कोई एक जगह रहेंगे तो फिर आपको तो फिर
और कोई बेटा?
एक और भी पॉइंट की है, अगर आप बिल्डिंग रखेंगे तो आपको अपनी इकोलॉजी पर लगानी पड़ेगी, आपको करना होगा।
सही, दोनों दोनों ने आपने एक ही बात करी और सही बात करी, दोनों की बात सही है कि अगर उनको आप प्रेजेंस में बंद करेंगे, तहखानों में बंद करेंगे, तो भाई तहखानों में क्यों बंद कर रहे हैं? मारने के लिए बंद कर रहे हैं तो भाई उधर ही मैदान जंग में मार दो अगर तुम्हें मारना है तो, ठीक है। प्रिजन में क्यों बंद कर रहे हैं? उनको जिंदा रखने के लिए बंद कर रहे हैं, तो भाई जिंदा रखने का मतलब क्या है? उनको खाना भी देना होगा, उनको पीना भी देना होगा, उनके कपड़ों का भी इंतजाम करना पड़ेगा, उनकी और कोई ऐसी जरूरत होगी उसका भी इंतजाम करना पड़ेगा, तो इसके ऊपर कितने आपके रिसोर्सेज जाएंगे, कितना माल पैसा जाएगा, कितने लोगों को प्रिजन की खिदमत के ऊपर लगाना पड़ेगा, जैसे कि अमरीका यूरोप वगैरह के अंदर यही होता है, वो प्रिजन में बंद कर देते हैं, वो प्रिजन जो है ना वो कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं, और उसके बाद भी क्या होता है कि उन प्रिजन के अंदर जो है वो उल्टा जराइम और बढ़ रहे होते हैं, राइट। यानी प्रिजनर्स के प्रिजन में बंद करने से प्रिजन जो होता है ना वो एक्चुअली क्रिमिनल सेल्स बन जाते हैं, क्राइम बढ़ रहा होता है इतना ज्यादा उसके अंदर, ठीक है। तो इस्लाम ये हल नहीं देता कि भी आप बस सबको उठा करके प्रिजन में बंद कर दें, सबको मार देना, तो मार देना जो है वो तो एक तो इंसानी उसके भी खिलाफ है, जंग के दरमियान मार दिया सो मार दिया, बाद में भी मारने की कोई ऐसी खास वजह बनती है तो फिर तो किसी को कतल किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ही सबको मार देना, इससे ना सिर्फ ये कि इंसानी रहम के भी खिलाफ है ये बात, और दूसरी ये भी है कि भाई मार देने से क्या होगा कि ये जो इतने सारे इंसान थे तो फिर ऑल ऑफ देम वर केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ना, दे वर ए मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है, ठीक है। तो वो सारी की सारी ह्यूमन रिसोर्स आपके फायदे में इस्तेमाल होने की बजाय सारी की सारी मर के खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस ह्यूमन रिसोर्स को मार देना इज नॉट अ सोल्यूशन आइदर, ठीक है। तो अब उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता था? बतौर गुलाम के डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था ताकि एवरी हाउस होल्ड, हर बंदा जिसके पास वो गुलाम है, फिर वो उनको खुद मैनेज करे, खुद उनकी हिफाजत का भी इंतजाम करे, खुद उनकी जो है वो खाने पीने का भी इंतजाम करे, और उनसे जो है वो फिर सर्विसेज भी दे, ठीक है, जिससे कि फिर पूरे की पूरी सोसाइटी को फायदा होता था और उन लोगों की जान माल की भी हिफाजत होती थी, उन लोगों की नरिशमेंट भी होती थी, और वो लोग जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक फौज की तरह दोबारा से इकट्ठा होकर के हमला भी नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो इतने सारे एडवांटेजेस इसके अंदर थे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो गुलाम बनने का एक सिस्टम था ना, तो इस सिस्टम को इस्लाम ने फिर भी इवेंचुअली आहिस्ता 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 करके खत्म किया। खत्म कैसे किया? कि कोई गुनाह हो गया उसका कफारा ये होगा कि इतने गुलाम आजाद करो, ये गुनाह हो गया इसका कफारा होगा कि इतने गुलाम आजाद करो, या अगर वैसे ही तुम्हें बहुत ज्यादा सवाब कमाना है तो एक गुलाम को आजाद कर दो, इससे तुम्हें इतना ज्यादा सवाब मिल जाए। तो इससे क्या हुआ कि इवेंचुअली ये लोग जो गुलाम बने हुए थे ना, ये भी फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ आना शुरू हो गए, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे इसके अंदर डिटेल्स हैं जो कि शायद हमने पिछली पहले किसी क्लास के अंदर बात करी थी, लेकिन अभी हम आगे चलते हैं। कि जुबैर अल-अतान के पास 1,000 गुलाम थे, तो इन गुलामों को वो क्या करते थे कि इनको ना मार्केट के अंदर भेजते थे मेहनत मजदूरी करने के लिए, सर्विसेज दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए। इन्होंने सवाल लिखा है लेकिन ये सवाल बेहतर है कि आप अलग से कर रही है क्लास में, जो तरह का आपके सवाल है। अच्छा आप कुछ कह, तो ये क्या करते थे कि इन गुलामों को फिर मार्केट में बेचते थे कि भाई आप लोगों का काम करें और उसके बदले में आप पैसा कमाएं, ठीक है। तो अब जाहिर है ये इन एक्सचेंज फॉर सम मनी ये लोग जो है फिर दूसरों के, किसी के घर के अंदर कोई काम काज करना है तो वो कर दिया, किसी का घर बनाना है वो घर बनाने का काम कर दिया, और फिर इसके बदले में उनको तनख्वाह मिलती थी। तो ये तनख्वाह ला करके हजरत जुबैर बिन अवाम जो था उनको देते थे, क्योंकि गुलामी की ये शर्त होती है कि भाई आपको खाना पीना और रहने का इंतजाम और कपड़ों का इंतजाम तो मालिक करेगा, लेकिन जो आप पैसा कमाते हैं ना वो मालिक की इजाजत के बगैर आप कहीं खर्च नहीं कर सकते, वो आपका अपना पैसा नहीं होता बल्कि आपको ला करके मालिक को ही देना है, ठीक है। तो वो ला करके जुबैर बिन अवाम को देते थे। जुबैर बिन अवाम क्या करते थे कि वो सारा का सारा पैसा जो कि उनके गुलाम कमा करके इनके पास लेकर के आते थे ना, वो सारा का सारा पैसा जो है वो सब्ता कर देते थे, अल्लाह के रास्ते में वो दे दिया करते थे, अपने पास कुछ भी नहीं रखते, ठीक है। अब जुबैर अतान जो है अल्लाह ने उनके माल में कितनी बरकत दी होगी कि इतना ज्यादा सदका करने के बावजूद अल्लाह ताला उनको और माल देते थे, और माल देते थे, और माल देते थे। सोचे ना कि भाई ये गुलाम जो है जो पैसा कमा के ला रहे हैं तो उसको सदका कर दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि भाई पैसा कमा के लाए और उन्होंने सदका कर दिया, खलास कोई मसला नहीं है, जीरो जीरो पॉइंट जीरो हो गया। नहीं, ऐसा तो नहीं है, बल्कि ये जो गुलाम थे भाई इनका खाना पीना कौन इंतजाम करता था? जुबैर रतान के जिम्मे था ना कि इनके खाने पीने के इंतजाम जुबैर रतान करें। क्या मतलब ये है? मतलब ये है कि इनके ऊपर उनका एक्सपेंस आता था, इनके ऊपर उनके एक्सपेंसेस आते थे, लेकिन उसकी भी ये परवाह नहीं करते, बल्कि उनकी कमाई को जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देते थे। इससे क्या होता था? एक तो होता था कि अल्लाह ताला की इनको रजा मिलती थी, सवाब मिलता था, और दूसरा क्या कि अल्लाह ताला के इंतजाम ये है, उसूल ये है कि जब कोई खर्च करता है तो अल्लाह ताला उसको पीछे से और देता है, ठीक है। तो उनके माल के अंदर बरकत होती थी। और इससे एक तीसरा भी फायदा होता था, वो फायदा अगर आप में से कोई बताना चाहे, एक और भी बहुत बड़ा फायदा होता था, ठीक है, इस पूरे के पूरे प्रोसेस से, जिसको कि आप कह सकते हैं कि जुबैर रज़ा का खाली पर्सनल फायदा नहीं था वो।
गुलाम जो होते हैं काम
ठीक है, बेसिकली इसी तरह का फायदा होता था कि इस तरीके से जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते थे ना, तो इससे इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के तहत देखा जाए तो पूरी की पूरी सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। अब ये मेरी फील्ड तो नहीं है, तो नजीब भाई इसके बारे में बहुत आपको अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी दो एक दो बातें जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। वो ये कि जब ये गुलाम बाहर जाते थे किसी का काम करते थे, तो उससे क्या होता था कि वही होता था जो आजकल हम एआई के साथ कर रहे हैं। क्या होता था कि जब आप
बिल्कुल
एआई से, अब जब कोई काम करवाते हैं तो जो एआई सॉफ्टवेयर होता है वो सीखता है वो काम करना ना, उसकी स्किल्स बढ़ जाती है, मशीन लर्निंग होती है उसके अंदर। तो इसी तरीके से जब इंसानों से आप कोई काम करवाते हैं या करते हैं तो इंसान भी तो सीखता है ना काम करना, तो उसकी स्किल डेवलपमेंट होती है, उसकी नॉलेज बेस जो है वो डेवलप हो रही होती है, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ज्यादा स्किलफुल बन रही होती है, ज्यादा काम करके, नए नए काम करके स्किलफुल बन रही होती है, और जब वो स्किलफुल बन रही होती है तो इससे फिर सबको फायदा हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये कि जब ये चैरिटी में पैसा दे दिया जाता है ना, तो इससे क्या होता है कि इससे एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होती है। भाई अमीर आदमी है जुबैर रतान, हजार गुलाम जो है वो इतना कमा के ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जुबैर रतान की वेल्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इससे क्या होगा कि वेल्थ जो है ना एक्यूमुलेट हो जाती है, यानी जमा हो जाती है एक ही हाथ के अंदर, एक ही घर के अंदर, एक ही फैमिली के अंदर। लेकिन सदका करते रहने से क्या होता है कि वेल्थ जो है इसकी सर्कुलेशन पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर होती रहती है, ठीक है। इससे फिर क्या होता है कि आप लोगों की क्लास में तो बात भी हुई थी कि रिच और पुअर का जो गैप होता है ना दरमियान में, जो गैप है ये दरमियान, ये गैप जो है वो बढ़ता नहीं रहता बल्कि ये गैप कम रहता है। नीचे वाले लोग भी सफिशियंटली रिच होते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो एक्सट्रीमली रिच नहीं हो जाते, ठीक है।
आजकल दुनिया के अंदर जिसको कैपिटलिज्म कहा जाता है ना, ये जो यूरोप, अमेरिका, चाइना, पूरी दुनिया के अंदर जो मुआशी निजाम है, ठीक है, वो क्या है, उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये सत्ता खैरात की कोई पाबंदी नहीं है, जिसका जी चाहे वो कर सकता है, लेकिन कोई जकात शकात की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी और भी बहुत सारे मसले, तो इस वजह से जो रिच होते हैं ना, दे बिकम रिचर एंड रिचर एंड रिचर एंड रिचर, और जो पुअर होते हैं दे बिकम पुअरर 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 पुअरर, हत्ता के एक मौके पे आकर के वो ऐसा हिट करते हैं कि दे हैव टू फाइल बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर इतने कर्जे चढ़ चुके हैं, लेकिन कर्जों को उतारने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो अब या तो लोग आकर के हमें पकड़ करके थाने में डाल दें, या ये कि आप जो है ना डिक्लेयर करते हैं कि भाई मैं बैंक करप्ट हो चुका हूँ। मैं यानी करप्शन की एक दूसरी शक्ल है बैंक करप्ट, करप्ट इज इक्वल टू बैंक करप्ट, अब मैं कुछ करने के काबिल नहीं, अब मेरी जान माफ कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो या तो हुकूमत से पैसे ले लेकर के अपना काम चला रहे होते हैं, या फिर वो सड़कों पर आ जाते हैं, होमलेस पीपल, इन्हीं को होमलेस पीपल इनके आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रिच एंड पुअर गैप जो होता है, ये बहुत बड़े फसादात का नतीजा बनता है, ठीक है। सदके का जो सिस्टम है ना, नफली सदकात का, इससे ये रिच एंड पुअर गैप नहीं हो पाता है, और मार्केट के अंदर, पूरी सोसाइटी के अंदर सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ चलती रहती है। अच्छा, तो जुबैर रहता इस तरीके से कमाते भी थे अपनी मेहनतों से, अपने गुनाहों की मेहनतों से, लेकिन दूसरे लोगों को दे दिया करते थे, अपना भी फायदा, आखिरत का भी फायदा, दुनिया का भी फायदा, और दूसरे लोगों का भी फायदा। अच्छा, उमर रतान के साथ दौड़ का मुकाबला एक दफा इन्होंने लगाया, तो लिखा है कि क्योंकि ये बहुत मजबूत थे, पहलवान कसम के सहाबी थे, ठीक है, तो एक दफा ना उन्होंने दूसरे पहलवान सहाबी जो कि उमर रतान थे, कैसे उमर रतान थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज पे तवाफ करने आए ना, तो नबी सलाम ने उमर उमर इधर आओ, देखो तुम जो है ना ये हजरे अस्वद पे आगे बढ़ने की कोशिश ना करना, तो तुम अगर कोशिश करो ना दूसरे लोगों को तुम्हारी वजह से तकलीफ हो जाएगी, ठीक है, ख्याल रखना दूसरों का, ठीक है। तो उमर अजान ऐसे थे कि अगर वो जरा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते ना, दूसरे तो पता नहीं उनके किससे आते हैं, उनके उनके तो जुबैर अजान भी ऐसे ही थे। तो एक दफा इन दोनों ने दौड़ का मुकाबला किया, लेकिन ये मोहब्बत वाली दौड़ थी, कोई ऐसा वो नहीं था, ठीक है। तो पहली मरतबा जुबैर रतान जीत गए, और फिर अगली दफा फिर दौड़ का मुकाबला किया, तो उमर रतान ने कहा कि अच्छा चलो दोबारा दौड़ते हैं, दोबारा दौड़ का मुकाबला किया, तो इस दफा जो है वो उमर रतान जीत गए। तो उमर रतान ने भी इसके ऊपर फरमाया कि अच्छा हम दोनों को अल्लाह ताला ने बराबर कर दिया, और फिर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा दिया, ठीक है। कंजुल उमाल की रिवायत है जिन्हें यहाँ पे नकल फरमाई है। यहाँ पर एक और बात याद आती है, हमारा फेवरेट टॉपिक कौन सी, एक और बात है अभी बिल्कुल इसी तरह का, ठीक
नतीजा
नतीजा क्या आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला, ठीक है। एक दफा नबी अलैहिस्सलाम और आयशा सिद्दीका तआला एक ही सफर में थे, किसी सफर में, हदीस के अल्फाज हैं कि सफर है, किसी सफर में थे, तो वहां पे कोई ऐसी जगह थी जहां पे कोई देखने वाला नहीं था, ठीक है ना भाई, सफर होते थे, रेगिस्तान के अंदर सफर हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में सफर हो रहा है, लोग कुछ थोड़े मौजूद होते थे, वो तो आबादी की जगह एक जगह होती थी, या काफिला एक जगह पे होता था, दूसरी जगह चले जाए वहां पर कोई भी देखने वाला नहीं होता था। तो ऐसी जगह पे नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु के साथ दौड़ लगाई, ठीक है, दोनों दौड़े, और आयशा सिद्दीका जो है वो उस रेस के अंदर जीत गई। अब वो वाकई अपने यानी अपने तेजी की वजह से जीती भाई, नहीं उनको इधर बैठा देते,
अच्छी बात, बात
अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा तो मुर्गियों को दिखाने लेते हैं मुर्गियां किसी काम तो है क्या उसकी तो या नबी अलैहिस्सलाम ने उनको जीतने दिया, ठीक है, वरना नबी अलैहिस्सलाम भी कोई मामूली चीज की थोड़ी थे भाई, ऐसे की थोड़ी अर्शद जान जान नबी अलैहिस्सलाम को हरा दे, तो नबी अलैहिस्सलाम को जीतने दिया, वो जीत गई। फिर एक और मौके पर इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि आयशा फिर दौड़ लगाते हैं, तो इस दफा जो है ना आयशा सिद्दीका जान जो है वो थोड़ा उनका वजन जो है वो ज्यादा हो गया था, तो वो इस दौड़ के अंदर हार, यानी होता ना कोई जीतना देना चाह रहे हैं, लेकिन वो अब कोशिश के बावजूद बेचारी जीत ही नहीं पा रही, बिल आखिर वो हार गई, ठीक है। तो उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि
हाजही बितिल्क सबका, ठीक है, ये उस जो तुमने मुझे हराया था ना, ये उसके बदले में है। आज जो है वो हिसाब बराबर हो गया, आज मैं जीत गया, उस दिन जो है वो तुम जीत गई थी, ठीक है। अब इसके ऊपर भी बाहर आजकल तो फिर दौड़ने का ही मामला है, ठीक है। आजकल तो खवातीन की, पहले तो सारी एक टीम होती थी, अब जो है वो उनकी क्रिकेट टीम भी होती है, उनकी हॉकी टीम भी होती है, उनकी फलानी टीम भी होती है, और वगैरह वगैरह क्या क्या बताएं आपको। हत्ता कि इस वक्त सबसे वर्स्ट सिचुएशन, इस वक्त की सबसे वर्स्ट सिचुएशन क्या है, किसी ने सुना है?
आइटिंग्स
रेसलिंग ये
कंबाइंड
बहुत
रेस,
पुरानी चीज हो गई है,
कंबाइंड रेस, कंबाइंड
कंबाइंड रेस नहीं, दैट इज स्टिल नॉट द वर्स्ट। व्हाट इज द वर्स्ट?
रेस
आप उड़ते में, यू आर क्लोज बट नॉट देयर येट। ऑनलाइन कुछ लोग सुन रहे हैं जिन्होंने इसको पहले सुना हो भी होगा इस पहली बार। व्हाट इज द वर्स्ट दैट वी हैव हिट द रॉक बॉटम? और इट्स नॉट द रॉक बॉटम के भी हो सकता है आगे इससे भी ज्यादा बुरा मामला अल्लाह रहम करे हम सब के ऊपर, लेकिन इस वक्त जो है व्हाट इज द वर्स्ट?
साउथ साउथ करता
नकाब बुरते में दौड़ना, इट्स क्लोज, नहीं, स्विमिंग इज नॉट द वर्स्ट।
निकापुर की में दौड़ी होती है, लेकिन उसको सुनत समझ के
Closer, but not there yet. सफा मरवा के दरमियान दौड़, सफा मरवा के दरमियान जो मिलान अख्तरैन है वहां पे दौड़ना। आजकल औरतें दौड़ती हैं, ठीक है, ये कौन सी जगह है? ये हरम है, ठीक है, ये मशायर, मशायर उल हराम है, मशायर हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे अगरचे के हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दौड़ी थी, लेकिन जब वो दौड़ी थी, जैसे कि इस वाकये के अंदर आयशा ताला भी दौड़ी थी, लेकिन जब दौड़ी थी तो सहाबा खड़े देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ सहाबा भी मौजूद थे, भाई कहाँ से सहाबा मौजूद है? तुम वहां पे मौजूद थे जो तुमने देखा था सहाबा को वहां पे खड़े हुए, अपनी तरफ से लगा दिया सहाबा भी मौजूद थे उधर, ठीक है। तो ना तो आयशा सिद्दीक को देखने वालों कोई मौजूद था, और ना हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखने वाला कोई मौजूद था। हत्ता के हमारे मक्की हिजाजी दामद बरकात हम क्या फरमाते हैं कि आयश के हजरत हाजरा जताने जब दौड़ी थी तो उनको उनका अपना न्यू बॉर्न बेबी भी नहीं देख सकता था। हजरत इस्माइल जतान जो उस वक्त न्यू बॉर्न बेबी थे वो भी उनको नहीं देख सकते थे। क्या मतलब, कितनी प्यारी बात फरमाई कि वो दौड़ती क्यों थी? इसीलिए दौड़ती थी ना कि इस्माइल जतान नजर नहीं आ रहे थे उनको, जब भी तो वो दौड़ती थी, क्योंकि बीच में जो है वो कोई ऐसी रुकावट आई हुई थी, वो जल्दी से दौड़ करके दूसरी तरफ जाती थी ताकि फिर से इस्माइल अजान को देख सके। यानी वो मुस्तकिल ऐसे चल रही होती थी, इस्माइल अजान को देखते हुए चल रही होती थी, और जहां भी इस्माइल अजान छुप गए रुकावट के पीछे फौरन दौड़ करके आगे जाती थी ताकि फिर से इस्माइल अजान नजर आना शुरू हो जाए। तो इसको इस पैराए में बयान किया मौलाना मक्की हिजाजी दारुलकातुम ने कि वो तो ऐसे दौड़ी थी कि उनका अपना सगा बेटा जो कि न्यू बॉर्न हालत में था वो भी उनको नहीं देख सकता था। और आज ऐसे दौड़ रही होती हैं कि सारी दुनिया के जो लोग होते हैं वो आपको देख रहे होते हैं दौड़ते, और वो कौन लोग होते हैं जो कि हरम की, जो कि एहराम की हालत में होते हैं, जो कि वहां पे उमरा करने के लिए आए हुए होते हैं, हज करने के लिए आए हुए होते हैं। दिस इज द वर्स्ट, इट्स इवन वर्स देन वुमेन स्विमिंग, इट्स इवन वर्स, डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट थिंग्स, आप किस जाविये से चीजों को देखते हैं इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता फरमाए। शायर इस्लाम समझकर फिजिकल एक्टिविटी, हाँ उसमें ना वो शायद कोई एक्सरसाइज हो रही होती है और उसमें फिर इस्लाम की ज्यादा काम आएगी। इस्लामिक फेमिनिज्म, इसको आजकल एक टर्म होती है इसके लिए, आजकल उसको इस्लामिक फेमिनिज्म कहते हैं, इस्लामी फेमिनिज्म कुछ लोग कहते हैं। अच्छा, तो फरमाते हैं कि इन लोगों ने फिर एक दूसरे को गले लगाया और इस तरह से वाकया खत्म हुआ। अच्छा, एक दफा जुबैर रज़ान जो है वो किसी सहाबी के सामने जो है वो अपना ऊपर का जो जो पहना हुआ था उन्होंने, तो उसको जो है वो तब्दील कर रहे थे, क्योंकि मर्द का तो सतर जो है वो तो नाप से लेकर के घुटनों तक होता है ना, तो इस तरह से कभी ऐसी जरूरत पेश आ जाए तो मर्द जो है वो एक दूसरे के सामने अपना शर्ट वगैरह जो है तब्दील कर सकते हैं। तो कोई दूसरे भी वहां पे मौजूद थे। तो जब इन्होंने अपनी कमीज चेंज करने के लिए उतारी ना, तो दूसरे जो साहब साहब थे उन्होंने देखा कि इनके सीने के ऊपर जिस तरह आईज होती है ना, ऐसे इस तरह के गड़े पड़े हुए हैं इनके सीने। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज है, ये तो मैंने कभी भी नहीं देखा किसी के जिस्म के ऊपर आंखों की शक्ल के गड़े पड़े हुए हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये तीरों और नेजों के निशान कि जो उहद के मैदान में नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत करते हुए मुझे लगे थे। कोई जख्म मुझे नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत के बगैर नहीं लगा, जो भी जख्म लगा है उनकी मौजूदगी में लगा। यानी ये वाले जो जख्म आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे वो वाले जख्म है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में मुझे लगे थे। एक मौके पर एक मुशरिक बुलंद जगह पर असलहा लेके खड़ गया, मुसलमानों को मुकाबले के लिए पुकारने लगा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा, नबी अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा कि आप मुकाबला करेंगे। इतने में हजरत जुबैर अलतान अपने आप को नबी अलैहिस्सलाम के सामने कर रहे थे, जैसे ऐसे ऐसे ना, ऐसे अपने आप को ऑब्वियस कर रहे हैं, प्रोमिनेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम की इनके ऊपर नजर पड़ गई। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, ए सफिया के बेटे खड़े हो जाओ और तुम जाकर के मुकाबला करो। चुनाचे जुबैर अलतान खड़े हुए और जाकर के उस मुशरिक का काम तमाम कर दिया। अब यहाँ पे क्या खूबसूरती है कि जिनको नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे थे वो इतना आगे नहीं बढ़े, ठीक है ना, या उन्होंने मना नहीं किया कि नहीं नहीं जुबैर मैं जाऊंगा, मुझे नबी सलाम कह चुके हैं। तो फिर ये एक नेगेटिव बात हो गई, किसी सहाबी के बारे में एक मनफी बात हो गई। तो सहाबा की ये शान है कि जब कभी किसी साथी के बारे में कोई नेगेटिव बात हो उसका नाम ही गोल कर जाता कि उनकी बदनामी ना हो जाए, ठीक है, उनके बारे में लोग जो है वो बदगुमान ना हो जाए, उनके लिए जो है ये जिल्लत का सबब ना हो जाए। तो ऐसे एक दूसरे को ये लोग, इतनी मोहब्बत थी पीर भाइयों के दरमियान, इतनी मोहब्बत थी कि ऐसे एक दूसरे को कवर किया करते थे। इसी को अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अशिद्दाउ अलल कुफार व रुहमाउ बैनहुम। ये जो शदीद होते थे ना, ये आपस में शदीद नहीं होते थे, एक दूसरे के ऊपर गुस्से नहीं होते रहते थे, लड़ाइयां नहीं करते थे, ये काफिरों के ऊपर जो नबी अलैहिस्सलाम को नहीं मानने वाले, उन्हीं को तो काफिर कहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये शदीद होते थे, आपस में तो ये रहम दिल होते थे, मोहब्बत करने वाले होते थे। और इस दर्जे की मोहब्बत कि किसी से गलती हो भी रही है तो उसका नाम ही गोल कर दिया, पता ही नहीं चला किसी को कि किसकी बात हो रही है। हुनैन में नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत के बारे में लिखा है कि हुनैन की लड़ाई में हज़रत ज़ुबैदा ने बहादुरी के जौहर दिखाए। ये उन लोगों में से थे जो नबी अलैहिस्सलाम के करीब थे और दुश्मन को करीब आने से रोक रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे। ग़ज़वा हुनैन के अंदर भी क्या हुआ था, ये करके फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं, 1 मिनट रह गया। ग़ज़वा हुनैन की कोई खास बात किसी को याद हो, आप बताएं।
वो जो पहाड़ों पर
लगातार की फतह हो गई, नहीं ये तो उहद में हुआ था कि लगातार की फतह हो गई। जी सर,
छुप गए थे, तो उनसे
तो शिकस्त जो 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 मुश्किल पड़ गई थी, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया माशाल्लाह। ठीक है, कि एक सहाबी ने ये कह दिया था कि आज तो हम तादाद में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहले हमेशा तादाद में मुसलमान कम होते थे। ये पहला मौका था, बल्कि हो सकता है आखिरी मौका भी हो, कि जिसमें मुसलमानों की तादाद काफिरों की तादाद से ज्यादा हो गई थी। ठीक है ना भाई, मक्का मुकरमा फतह हुआ था, फिर जो है वो दूसरे भी लोग आकर के ज्वाइन हो गए थे, तो मुसलमान जो है वो 12,000 का लश्कर हो गया था। ठीक है, और काफिरों की तादाद 12,000 से कम थी। तो एक सहाबी ने कह दिया कि ये तो हम तो आज जीत जाएंगे, गालिब आ जाएंगे काफिरों पर। अच्छा, फिर मुसीबत उन सहाबी पे आई, उनको सजा मिल गई, बल्कि क्या हुआ, सब पे मुसीबत आई। क्यों भाई, सबने तो ये काम नहीं कहा था, या सबने कोरस में आज हम ज्यादा हैं सब मिलके बोल रहे हैं तो इस वजह से सब पे मुसीबत आ गई, ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर क्यों हुआ।
रोका नहीं था
किसी ने उनको रोका नहीं, पीपल ईदर केप्ट क्वाइट और दे एग्रीड विद हिम। हाँ वाकई यार, आज तो हम ज्यादा है, आज तो मसला ही नहीं होगा कोई। ठीक है ना, अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया, अल्लाह ताला सहाबा के बारे में इतने स्ट्रिक्ट थे, इतने स्ट्रिक्ट थे कि जरा इधर से उधर देखते थे फौरन इस्लाह करते थे। ठीक है, ऐसी मुसीबत आई कि वो थोड़े से जो काफिर थे ना, वो पहाड़ों पे चढ़ गए, वहां से उन्होंने मुसलमानों को तीरों की जद पे दे दिया, ऐसे तीर बरसाए कि पूरे लश्कर में जिसमें नबी अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, नबी अलैहिस्सलाम वाज नॉट पार्ट ऑफ दिस एरर और मिस्टेक, और यकीनन जो शैतान थे वो भी इस गलती का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन मेजोरिटी से कोई गलती हो गई होगी इस तरह की। तो सहाबा अफरा तफरी मच गई, सब भागना शुरू हो गए, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो पुकार पुकार के कहने लगे लोगों वापस आओ। और वो मशहूर जुमला जो है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अना नबी ला कज़िब, मैं नबी हूं, इसके बारे में कोई झूठा मामला नहीं है, अना नबी ला कज़िब अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, अना इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है। क्यों? इसलिए कि वहां पर अरब के बहुत सारे कबाइल थे जिनमें से शायद अक्सर जो है अब्दुल्ला दत्तानों को जानते भी ना, लेकिन अब्दुल मुतलिब को सब जानते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितना पॉलिटिकली करेक्ट जुमला इस्तेमाल किया कि अपनी निस्बत अपने दादा से बता रहे हैं, राइट। कितने अवेयर थे, कितने जहीन थे नबी अलैहिस्सलाम कि अपने वालिद से नहीं अपने दादा से निस्बत बता रहे हैं, क्योंकि दादा को सब जानते थे अब्दुल मुतलिब को। कोई भी ऐसा किताब आपके अंदर जो कि अब्दुल मुतलिब को नहीं जानता, ठीक है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहरहाल सिखा दिया, इस्लाह हो गई सहाबा की, फिर अल्लाह की मदद आ गई, फरिश्ते भी उतर आए, और फिर सब जो है वो काफिर अपना मामला खत्म हो गया। इसके ऊपर भी फिर नबी रसूल की हिफाजत में जो बहरा आगे आगे फिर बाकी एक दो वाकयात रह गए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगली क्लास के अंदर जो बहरा का वाकया है वो फिर मुकम्मल मिल जाएगा। किसी कोई सवाल हो, बल्कि ऑनलाइन तीर अंदाजों का हमला, हाँ, लेकिन वो हमले के जो पीछे मामला हुआ तो अच्छा, ठीक है, चलो। और कोई सवाल वगैरह अगर नहीं है तो हम यहाँ पे क्लास रोकते हैं, वो आपको तावान है, अलहमदुलिल्लाह, सलाम।